मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक जो कल पार्लियामेंट ने पारित किया है इस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले एक दो जो दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आइए उन पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसके बारे में आज आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, दूरदर्शन पर भी इसकी खबर थी, लेकिन बहुत ही सामान्य सी खबर थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अखबारों में थोड़े से विस्तार के साथ इस पर दिया गया है। सरकार ने यह बिल 2019 में पार्लियामेंट में पेश किया था, लेकिन इसे अब वापस ले लिया गया है। इस संदर्भ में मैं दो तीन बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से संबंधित है। पहली बात तो यह है कि सरकार ने यह बिल पेश किया और सरकार अब इसे वापस ले रही है। सरकार बिल्कुल वापस ले सकती है, किसी भी बिल को वापस ले सकती है, और वापस लेने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आगे उसे लगने लगा हो कि यह बिल पारित नहीं करा सकेगी, दूसरा ये लगने लगा हो कि इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, जनता इसके खिलाफ खड़ी है, यह भी हो सकता है, तीसरा उसको ये लगने लगा हो कि नहीं नहीं ये बिल अभी पर्याप्त नहीं है, इसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार कोई बिल पेश करके उसे वापस लेती है तो इसे सरकार की कमजोरी मानने की भूल मत कीजिएगा। यही तो डेमोक्रेसी है कि सरकार अड़ियल नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम जो चाहते हैं, क्योंकि हमारा बहुमत है लोकसभा में, तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो दोस्तों, बिल वापस लिया गया। अब देखिए कि जब बिल वापस लिया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। पहले कौन डिसाइड करेगा कि इस बिल को अब वापस लेना चाहिए? डेफिनेटली कैबिनेट डिसाइड करती है ना, जो मंत्रिमंडल है वह डिसाइड करता है। तो जो कैबिनेट की जो कमेटी है उसने डिसाइड किया कि ठीक है अब इस बिल को वापस ले लेना चाहिए, और ले लिया गया। और इसके बाद फिर संसद में प्रस्ताव ले आया गया कि भाई हम इस बिल को वापस ले लेते हैं, बिल वापस हो गया। ये कोई बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी और कठिन प्रक्रिया नहीं है, तो इस तरह से बिल वापस हो गया। ये जो बिल वापस लिया गया है इसके पीछे रीजन यह है कि इसे अपर्याप्त समझा गया। उस समय जब यह बिल पेश किया गया था तो देखिए होता क्या है कि जब किसी विधेयक पर बातचीत होती है तो सरकार या तो जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं वो जो सुझाव देते हैं उन्हें स्वीकार करके और बिल में शामिल करके बिल पारित करा लेती है, या अपनी ही बातों पर अड़ी भी रह सकती है, या ज्यादातर मामलों में ये होता है कि, और इसे लोकतंत्री परंपरा भी माना जाता है कि अगर किसी बिल पर बहुत बहस हो रही है और मांग की जा रही है तो आप उसे फिर संसद की जो संयुक्त समिति होती है, ज्वाइंट कमेटी, संयुक्त समिति, उसे आप सौंप दीजिए। संयुक्त समिति, संसद की संयुक्त समिति। संसद में कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है, ये संसद है ना, राष्ट्रपति जी को हम अब यहां नहीं ले रहे हैं, तो दोनों हाउसेस के मेंबर इस समिति में होंगे। लोकसभा की तुलना में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या होगी इस कमेटी में आधी होती है लगभग, है ना, क्योंकि वहां आप देखिए कि उसके सदस्य संख्या भी लगभग आधे हैं। तो इस तरह से संयुक्त समिति बनती है और फिर संयुक्त समिति इस बिल पर विस्तार के साथ विचार करती है, और विचार करने के बाद फिर वो सरकार को सुझाती है कि भाई ये परिवर्तन आप कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशन देती है। तो इस बिल पर विचार करने के बाद उसने 81 संशोधन का प्रस्ताव दिया था, 81 संशोधन। सोच करके देखिए, इसका मतलब है कि नहीं, बिल अपर्याप्त है। और सरकार ने ये बात कही भी है अपने स्टेटमेंट में कि अब ये जो बिल है अपर्याप्त मालूम पड़ रहा है। अब जो भारत अपने डिजिटल इकोनॉमी को डेवलप करना चाह रही है उसके अकॉर्डिंगली वो बिल लेकर आएगी, ताकि हमारे जो स्टार्टअप हैं और जो डिजिटल इकोनॉमी है उसे बढ़ावा मिल सके। क्योंकि अभी जो बिल पेश किया गया था सरकार ने, उसका मानना है कि ये बहुत पुराना था, संकीर्ण था, ये केवल पर्सनल डेटा और कॉरपोरेट सेक्टर को डील कर रहा था, यहाँ तक कि सरकार इसके दायरे से बाहर थी, इसमें डेटा लोकलाइजेशन के साथ सच पूछे तो न्याय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस कानून में व्यवस्था की गई थी कि जो डेटा का जो सर्वर है वो विदेश में रह सकता है लेकिन उसकी कॉपी आप हमें दे दीजिए। इसका मतलब है कि हमारे डेटा पर विदेशों का नियंत्रण है और उसका कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ठीक नहीं था, क्योंकि ये मांग की जा रही थी कि जो सर्वर होगा वो भारत में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत में ही सर्वर है तो एक तो हमारा डेटा प्रोटेक्शन हो जाएगा, उस पर हमारा नियंत्रण रहेगा, दूसरी बात यह है कि उससे आय भी होती है। जैसे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 वर्षों में इससे जो आय हो सकती है वो लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। सोच करके देखिए, तो वो लाभ हमको मिलेगा। फिर जब हमारे यहाँ ही ये डेटा सर्वर होंगे तो उससे रोजगार भी मिलेगा, तो अर्थव्यवस्था में उसका योगदान हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ कमियाँ सरकार को दिखाई दे रही थी और अब ये बिल वापस ले लिया गया है और सरकार ने कहा है कि इस पर पुनर्विचार करके और बाकायदे पब्लिक से बातचीत करके वो फिर से बिल लेकर आएगी। तो मान करके चलिए तो बिल तो आएगा ही, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है और अब हम जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें अब ये बहुत अनिवार्य हो चुका है। तो दोस्तों, दूसरी जो खबर है, कल हम लोगों ने ताइवान के बारे में बात की थी। ताइवान में जो है हमारे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की जो स्पीकर है वो पहुंची और इसके बाद फिर चीन भड़का होना ही था और इसके बाद चीन ने ताइवान पर बकायदे कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं कि आपके यहाँ से अब मछलियाँ हमारे यहाँ नहीं आएंगी, फल नहीं आएंगे, संतरे नींबू खट्टे फल पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है चीन ने। साथ ही जो चीन ताइवान को जो रेत का निर्यात करता था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत से ताइवान में ऐसी कंपनियाँ हैं जो एक तरह से उसके स्वतंत्रता का समर्थन करती थी, उस पर भी उन्होंने अलग तरीके के कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो इस तरीके के चीन ने अब ताइवान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होना ही है, लेकिन आप देखिए कि अभी भारत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और मुझे लगता है कि शायद भारत टिप्पणी करेगा भी नहीं। और अगर सच पूछे तो अगर मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में होता तो शायद अगर कोई सलाह मांगता तो मैं यही कहता कि हाँ, हमें टिप्पणी करने की क्या जरूरत है, हम तो देख रहे हैं और हम अपने हितों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारा हित सद ही रहा है, तो हम क्यों इस पर कोई टिप्पणी करें। दोस्तों, ये दो खबरें थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो बहुत ही सरल सा विषय है। नेशनल एंटी डोपिंग बिल ये पारित हो गया है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी हमारा पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ना, संसद में जो जवाब दिए जाते हैं उसमें ढेर सारे आंकड़े आ रहे हैं, बहुत सारे बिल पारित हो रहे हैं, कल भी कई बिल पारित हुए हैं, उसमें से मैंने यही बिल लिया है। मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है कि ये बिल मैंने क्यों लिया। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप समझ सकते हैं, ये बिल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे खेलों से है, स्पोर्ट्स से है। आप देखें कि किस तरीके से भारत पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे स्पोर्ट्स में, आप यूं कह लीजिए कि अपने पैर जमाता चला जा रहा है। ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, कॉमनवेल्थ को अभी आप देख ही रहे हैं, यहां तक कि जो दूसरी स्पर्धाएं होती हैं विश्व स्तर की उसमें भी भारत बहुत अच्छा कर रहा है। कंपैरेटिवली अगर करें तो बहुत अच्छा कर रहा है भारत। ने अपनी नीतियों के तहत भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इन सब से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, अगर परिचित नहीं है तो आपको परिचित होना चाहिए, इस पर आपकी तैयारी हो। तो उसी क्रम में आप कह लीजिए कि यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित किया गया है। अब इससे क्या फायदा होगा, इसके चरित्र को थोड़ा सा जान लेते हैं और इसके फायदे को आप देखिए। ज्यादातर जो अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो इसके लाभ को पूछा जाएगा, यह कदम क्यों उठाया गया, बहुत ही और इसका उत्तर भी बहुत सामान्य सा है। डोपिंग क्या होती है, आप जानते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं विश्व स्तर पर ही है कि वो किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते। कुछ समय पहले तक कुछ पदार्थों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ये माना जाता है कि अगर वो पदार्थ ले लेते हैं वो तो उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो यानी कि अननेचुरल उनकी कैपेसिटी हो जाती है, तो फिर आप कैसे सही मूल्यांकन कर पाएंगे। तो मादक पदार्थों के सेवन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो इसने मादक पदार्थ लिया है या नहीं लिया है, इसके लिए डोपिंग टेस्ट होता है, इस टेस्ट को कहा जाता है डोपिंग। वो टेस्ट लेकर के लेबोरेटरी में भेजा जाता है और वहां से फिर रिपोर्ट आती है। और यहां तक पाया गया है कि जैसे मान लीजिए कि आप मैच में आप गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, डोपिंग टेस्ट में बाद में ये खबर आ जाती है कि नहीं, आपने मादक पदार्थ का सेवन किया था, तो आपका जो मेडल है वो कैंसिल तक कर दिया जाता है। मतलब इतनी बड़ी दंडात्मक कार्यवाही इस पर होती है। भारत को, हमारे जो खिलाड़ी रहे हैं उनको इसके नतीजे भोगने पड़े हैं और विश्व के सभी देशों के खिलाड़ी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही बैठते हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो टेस्टिंग में पास हो जाएंगे, निकल जाएंगे, कुछ तो ले लो, इस तरह से कुछ भी सोचते रहते हैं, आदमी तो आदमी ही है। तो दोस्तों, अब उसको रोकने के लिए हमने अपना बिल पारित किया है कि हम अपना बिल लेकर आते हैं। इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि हमारे खिलाड़ी बाहर गए, पता लगा डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए, तो हमको जो मेडल मिलना चाहिए था हम उससे वंचित रह गए, हमारा जो इंटरनेशनल जो लेवल होना चाहिए था अचीवमेंट का वो पुअर हो जाता है। हम अपने यहां करेंगे ना डोपिंग टेस्ट, ठीक है, तब हमारा जो स्तर है वो सुधर पाएगा। दूसरा यह है कि अगर भारत ये नीति बना लेता है और बन ही गई है तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण देशों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास अपना ही कोई कानून इसके बारे में है, जैसे कुछ देशों के पास है, अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, जापान के पास है, फ्रांस के पास है, इतने महत्वपूर्ण देशों के पास ये नीतियां हैं और खासकर सुविधाएं भी हैं। हमारे पास अभी डोपिंग टेस्ट करने की सुविधाएं नहीं है, विदेशी कंपनियां हैं हमारे यहां, लेबोरेटरीज हैं उनकी और वो डोपिंग टेस्ट करके देती है। अब क्या होगा इस बिल के बाद? अब आप देखिए कि हमारे पास जो इस तरह की एजेंसीज हैं, पहला तो यह है कि उनको एक तरह से वैधानिक आधार मिल जाएगा, उनको स्टेचुरी फ्रेमवर्क मिल जाएगा। जैसे हमारे यहां है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को जब कानूनी अधिकार मिल जाएगा तो वो जो भी कोई बात कहती है तो वो बाध्यकारी होगी और फिर सीधी सी बात है कि सरकार भी उसे अपने तरीके से विकसित कर सकती है। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पूरे के पूरे देश में हम एक नेटवर्क तैयार कर सकेंगे डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरीज को लेकर के, मतलब जगह जगह प्रयोगशालाएं कह लीजिए, लेबोरेटरीज से सेंटर कह लीजिए, चेकिंग सेंटर कह लीजिए, कि जहां पर डोपिंग टेस्ट किए जा सकेंगे। तो ये हमारी अपनी ही सुविधा होगी। तो खिलाड़ी, मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के खेल हो रहे हैं या दूसरे के स्तर के खेल हो रहे हैं, डाउट होता है तो आप बकायदे डोपिंग टेस्ट उनका कर लीजिए क्योंकि हमारे पास अपनी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और दोस्तों, मजेदार बात यह है कि इस टेस्ट में सारे वे लोग शामिल हो जाएंगे जो खेल से जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे खिलाड़ी तो शामिल होंगे ही लेकिन कोच भी शामिल होंगे, मैनेजर भी शामिल होंगे, इस तरह से जो कर्मी होते हैं खेल से जुड़े हुए, उन सबको डोपिंग टेस्ट के दायरे में लाया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज इस पर आप अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, है ना। मैगजीन में इस पर काफी डिटेल्स में आगे चल करके आपको पढ़ने को डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, IPEF और RCEP तथा भारत की स्थिति। मैं इस पर बात अभी करने की स्थिति में नहीं हूँ समय को देखते हुए, बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसे आप ध्यान से पढ़ें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या छोटा सा नोट आप जरूर IPEF को लेकर के और RCEP को लेकर के और खासकर इसके संदर्भ में जो भारत की स्थिति है उसको लेकर के बना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे जान पड़ता है। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं। इसके लिए अल्पना कुमारी ने एडमिशन लिया है, इनका गांव है पोखरपुर, जिला नालंदा, बिहार से। तो अल्पना, आपका मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं चंदन त्रिपाठी सीतापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से और प्रीति अमरकंटक मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।